श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
मन में स्मरण करो साईं राम,
मन में स्मरण करो साईं राम,
राम नाम में लीन रहो सब,
राम नाम में लीन रहो सब,
राम नाम में लीन रहो सब, राम बाबा
दिन दुखियों के, राम बाबा
दिन दुखियों के, राम बाबा
दिन दुखियों के, राम
मन में स्मरण करो साईं राम,
मन में स्मरण करो साईं राम,
प्रेम ही बाबा स्मरण करो,
विचार करने वाली बात है ये। हम अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक की जो यात्रा तय करते हैं, सुबह से लेकर रात तक की जो हमारी जो भाग दौड़ होती है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, किस वजह से हम वो कर रहे हैं, उसका मोटिवेशन क्या है। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसका तात्पर्य क्या होता है। तात्पर्य होता है धन अर्जित करना, ताकि आपकी जीविका सही तरीके से सही मायने में चल पाए, आपको इतना धन मिल जाए कि आप अपना जीवन सुखी से व्यतीत कर पाए और साथ में ऑब्वियसली एंजॉय भी कर पाए। लेकिन हमने अपना जीवन केवल इस धरती तक सीमित किया है, ये मानना रहा है जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है, हो सकता है 80 साल की हो, हो सकता है 90 साल की हो, परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता। बच्चा पैदा होता है, मां की गोद में होता है, पिता की उंगली को पकड़ के चलना सीखता है, धीरे धीरे उसके कदम विद्यालय की ओर बढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहा होता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, उसकी अपनी इच्छाएं सामने आ जाती हैं कि वह जीवन में क्या पाना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है। अधिकतम लोगों का लक्ष्य होता है सुखी जीवन, समृद्धि हो। लेकिन हम अपने जीवन को केवल मृत्यु तक सीमित रखते हैं। हम ये सोचते हैं जितना भी समय परमात्मा ने हमको दिया है, इस बीच में हम क्या पा सकते हैं। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धन को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली संतानों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। कभी आपने इस बात पे विचार किया कि जिस दिन आपका ये शरीर गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, आपके ही घर वाले आपके शरीर को उठा के राम नाम तत्ते का नारा लगाते हुए जाप करते हुए उसको अग्नि दे देंगे। मुट्ठी भर राख बन जाएगा आपका शरीर। उसके बाद आपकी आत्मा कर्मों के अनुसार जिस लोक में भी जाएगी, कुछ समय के बाद फिर से धरती में लौट के आएगी। अन्यथा आपको मुक्ति मिल गई हो तो अलग बात है, कभी आपने ये विचार किया कि ये आत्मा जो जन्म लेती है उसके पीछे रहस्य क्या होता है? कल्पना मात्र है। कई शास्त्रों के अध्ययन के बाद और अपनी कल्पना को इकट्ठा करते हुए हमें ये लगता है कि आत्मा जिस लोक में भी है वहां पर वह पहले अपनी हिस्ट्री को पढ़ती है, अपने इतिहास को पढ़ती है। मान लीजिए जस्ट फॉर ए मोमेंट, आप जो भी क्रिया करते हैं, आपके मन में जो भी विचार उठता है, आपकी जीभ से जो भी शब्द निकलता है, आपके शरीर से जो भी कर्म होता है, सारा का सारा हूबहू रिकॉर्ड किया गया है। लिखने की बात छोड़िए, रिकॉर्ड किया गया है। आप यूं समझिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जो भी कर रहे हैं 80 साल की जीवन यात्रा में, ये 90 साल की जीवन यात्रा में, वो पूरी आपकी लाइफ स्टोरी एज इट इज, जैसे ही है वैसे ही रिकॉर्ड की गई है। आजकल आप एक दूसरे को व्हाट्सएप में वीडियो क्लिप भेजते हैं ना, इंटरनेट में जाके पूरी की पूरी मूवी देख लेते हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये संभव नहीं है कि आपके जीवन यात्रा की एक डीवीडी बन जाए, एक यूएसबी बन जाए, पेन ड्राइव बन जाए, या कोई भी और रिकॉर्डिंग मीडियम हो जिसमें पूरा रिकॉर्ड कर दिया जाए और दूसरे लोक में पहुंचा दिया जाए? जब आपके सैटेलाइट्स किस देश में क्या क्रिया हो रही है 24/7 24 hours a day 7 days a week निरंतर एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये तो इंसान ने बनाई चीजें हैं, तो भगवान की बनाई हुई चीज तो उससे कई हजार गुना आगे होगी। एक कल्पना मात्र है। तो आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री रिकॉर्ड होके एक लाइब्रेरी में जाके रुक गई, रख दी गई। आत्मा जन्म लेने से पहले अपनी ही लाइब्रेरी में जाके या परमात्मा के पुस्तकालय में जाके या संग्रहालय में जाके अपने ही कई जन्मों की गाथा को पढ़ता है। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों की गाथा को पढ़ता है। जब पहली बार जन्म लिया, जो भी योनि रही हो, पत्थर की योनि हो, कीट पतंगों की हो, कीड़े मकोड़ों की हो, पक्षियों की हो, जानवरों की हो, इंसान की हो, पेड़ पौधों की हो, जिस भी रूप में जन्म लिया, वहां से लेके आज तक जितने भी जन्म लिए हैं, सारी की सारी रिकॉर्डिंग वहां पर है। जब हम कहते हैं अगर 3 घंटे की पिक्चर है उसको देखने में 3 घंटे लगते हैं, ये बात सत्य है? पांच घंटे का डीवीडी है तो उसको देखने में 5 घंटे लगेंगे आपको। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा तरीका भी हो जो आप जल्दी दे सकते हो। ये भी कहा जाता है, केवल कहा जाता है, कल्पना मात्र आप सोच सकते हैं। कहते हैं मनुष्य का 1 साल 1 year दूसरे लोक में 1 दिन के बराबर होता है। अगर आपने 100 साल जीवन जिया है वो उस लोक में जाकर 100 दिन के बराबर हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि 100 साल की जीवन गाथा को उन्होंने 100 दिन में देख लिया उनके टाइम फ्रेम में। आप कह सकते हैं कोई 6th sense होगी जिससे एकदम देखते ही सब कुछ समझ में आ जाता हो। तो कहना ये जा रहे हैं कि उस लोक में आत्मा जन्म लेने से पहले संग्रहालय में जाके अपनी सारी जीवन गाथाओं को पढ़ के या देखकर ये तय करते हैं कि मेरे को अगला जन्म कहां पर लेना है या अगला जन्म मेरे को किन परिस्थितियों में लेना है क्योंकि मैंने इस प्रकार के कर्मों को भोगना होगा। निर्धारित कर लिया अपने आप, मैंने किसी के पैसे ले लिए, पैसे वापस नहीं किए जन्म में। मान लो किसी को मैंने धोखा दिया है, धन संपत्ति ऐंठ ली मैंने। जब आत्मा उस लोक में जाती है अपने ही कर्मों को देख के शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि मैंने क्या किया, नहीं मुझे वापस जाके अपने कर्म को भोगना होगा, इस कर्म का भुगतान करना होगा, इस पैसों को लुटाना होगा और इसी व्यक्ति को। अब विचार कीजिएगा आप, सोचिएगा पल भर के लिए। आपको एक जन्म में या एक जन्म लेकर किसी को पैसे लौटाने हैं, लेकिन वो तभी होगा जब वो व्यक्ति भी उसी समय पे जन्म लेके आपके सामने हो। सही बात है या नहीं? और अगर वो व्यक्ति जिसको आपने धन संपत्ति देनी है उसके अपने जीवन गाथा के अनुसार वो 500 साल के बाद जन्म लेगा तो आपको 500 साल इंतजार करना पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य ये 100 साल की जीवन गाथा जब आप उस लोक में जाते हैं वहां पर आपको ना जाने कितने वर्षों तक, कितने सदियों तक, कितने हजार सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। अब विचार कीजिए आप, आपने कुछ ऐसा कर्म किया जिससे आपको बेचैनी महसूस हो रही है, अन्य शब्दों में यू आर गिल्टी, यू हैव ए गिल्टी कॉन्शियसनेस। मन ही मन में आपको वो बात खाई जा रही है कि मेरे बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ मी, सब कुछ जानने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, मैंने ऐसा कर्म किया। और आप शरीर छोड़कर दूसरे लोक में जाते हैं ये भावना आपके साथ है, ये भावना आपके साथ है, वे गिल्टी कॉन्शियसनेस आपके साथ है, और अगले जन्म होने में भी 500 साल का इंतजार पड़ा हुआ है, तो 500 सालों तक आप तड़पते रह जाएंगे। विचार कीजिएगा, क्या इज इट वर्थ इट, क्या हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो आने वाले समय में हमारे मन को दुख देता रहे, उत्तेजना बढ़ती जाए हृदय में। मरने के बाद आपके पास शरीर नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है आपका मन, वह जीवित है। और सारे दुख सुख केवल मन ही तो भोगता है। मन ही तो है जो आपको बता रहा है आप दुखी हैं, जो आपको बता रहा है आप सुखी हैं। इट इज जस्ट द स्टेट ऑफ माइंड। इसीलिए कहा गया मन को शुद्ध करने के लिए, मन के अंदर अन्य विकार उत्पन्न ना हो, उसके लिए, मन के शुद्धिकरण के लिए आप रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करें। सुबह नहाते हुए शरीर को धोते हैं, लेकिन मन को साफ करने की क्रिया नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना, लुक एट योर बैकयार्ड, घर के पीछे देखिए आपने कितना गंद इकट्ठा किया हुआ है। आजकल हम लोग तो हैं, लोगों के घर में गैराज में जाके देखिए वहां पर क्या है, बहुत सा सामान इकट्ठा होता है जो यूज नहीं होता, पड़ा हुआ है बस, कि शायद इसका प्रयोग कभी करेंगे हम। फेंकना नहीं है, किसी को देना भी नहीं है, लेकिन बटोर के एक कोने में रख देना है। अपने घर की अलमारी में देखिए, कपड़ों की कमी नहीं है, इतने कपड़े पड़े होंगे जो आप पहनते भी नहीं है, हो सकता है आपको पूरे आते भी ना हो, आपका साइज ही चेंज हो गया हो, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन फिर भी हमने रखे हुए हैं। घर में कितना खाना वेस्ट होता है, फिर देखिए खोल के, खाना पड़ा हुआ है चार पांच दिन का, फिर बाद में फेंक देते हैं उसको, ज्यादा बन गया फ्रिज में रख दिया, कल खाएंगे परसों खाएंगे, फिर फेंक दिया बाद में, पुराना हो गया। हमेशा याद रहे कि संसार में जो रिसोर्सेस है उनको हम खत्म कर रहे हैं। विचार कीजिएगा जरा आप। इसलिए सदैव इस बात पे ध्यान दें, हमारे शरीर से, मन से, वाणी से कोई खराब कर्म ना हो। जबकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, फिर भी हो सकता है प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो। किसी व्यक्ति ने बहुत बढ़िया बात बोली, उन्होंने कहा हमारे पर ऋण है, माता पिता का ऋण। माता पिता ने पूरा जीवन लगा दिया बच्चों के सुख शांति के लिए, मुख स्मृति के लिए, लेकिन बच्चे कभी माता पिता का कुछ दे नहीं पाए। गुरु का ऋण, गुरु ने सारी शिक्षा दी बच्चों को, लेकिन बच्चे गुरु के लिए कुछ नहीं कर पाए। देश का ऋण, धरती माता का ऋण, प्रकृति का ऋण, कई ऋण होते हैं, लेकिन लेट अस टॉक अबाउट प्रकृति ऋण, नेचर का ऋण। हम कहते हैं जब आदमी मरता है उसको अग्नि दी जाती है, बहुत सिंपल सी बात, साधारण सी बात कर रहे हैं। जो आदमी मरता है उसको जलाया जाता है, उसके शरीर को जलाने के लिए एक पेड़ खर्च हो जाता है, इतनी लकड़ी चाहिए होती है जब पूरा पेड़ होता है वो। तो अगर एक दिन में 1,000 व्यक्तियों को अग्नि दी गई तो 1,000 पेड़ जल गए ना, तो प्रकृति का ऋण है कम से कम 2 पेड़ तो लगाओ आप, एक अपने लिए एक एक्स्ट्रा लगा के जाइए। जब वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रकृति में हम जो भी करते हैं उसमें ध्यान दें कि कोई चीज वेस्ट ना हो रही हो। इसलिए आजकल हर जगह प्लास्टिक अवेयरनेस आ रही है कि प्लास्टिक के बैग यूज नहीं करो। आप शॉपिंग करने जाते हैं, कभी आपने सोचा कि हम प्लास्टिक वहां से ना लें, घर से अपना बैग ले जाएं? आप सोचेंगे मेरे अकेले से क्या होगा, अकेले से ही होगा, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने जीवन की, हर काम को सही प्रकार से करते हैं, तो उस लोक में जाकर भी आपको शांति प्राप्त होगी। जन्म लेने से पहले आत्म निर्धारित करती है कि इस जन्म में मुझे कौन से कर्मों को पे ऑफ करना है, मैं किसके लिए जा रही हूं। लेकिन जन्म लेने में तकलीफ होती है, उस तरह की कंडीशन नहीं मिलती है जन्म लेने के लिए, तो उसके लिए आपको हमेशा सोचना होगा कि मैं अपने जीवन में ऐसे कौन से कर्म करूं ताकि उस लोक में मुझे दुख ना हो। सारे संसार से झूठ बोल सकते हैं, घर वालों से झूठ बोल सकते हैं, सगे संबंधियों से झूठ बोल सकते हैं, दिखावा मात्र कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते ना। खुद तो जानते हैं क्या हो रहा है ना। इसलिए कहा कि मन की शुद्धि पर ध्यान दें, गायत्री मंत्र का जाप नित्य करते रहें, ताकि जाने से पहले आपके मन के अंदर काफी सफाई आ जाए, जब उस लोक में जाएं आपको तकलीफें कम हों। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, मुक्ति मिल सकती है, लोगों को मिली है। उसके लिए वासनाएं समाप्त होनी चाहिए, इच्छाएं समाप्त होनी चाहिए, कर्म शून्य हो जाने चाहिए, कर्तव्यपन समाप्त हो जाना चाहिए, तब मुक्ति का द्वार खुलता है। विचार कीजिएगा जरा, जस्ट फूड फॉर थॉट। विचार कीजिएगा क्या मेरे कर्म मेरे को अगले लोक में, परलोक में सुख शांति देने वाले या नहीं। अगर नहीं तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, उस पर विचार कीजिए, उसके सॉल्यूशन को खोजिएगा, भगवान आपका भला करेगा। जय सियाराम।